दोस्तों, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए या फिर यूं कहें कि हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? आप जिम में जा सकते हैं, टीवी पर, इंटरनेट पर वीडियोस देखकर कसरत कर सकते हैं, या फिर हम भारतीयों के दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है वो है योग करके। लेकिन सामने ये प्रश्न भी होता है कि क्या योग भागदौड़ भरी जिंदगी में कम से कम समय में करें तो क्या उसके फायदे वही होंगे? योग कितने समय तक करना चाहिए? क्या एक ही टाइम पर करना चाहिए? कौन से टाइम पे करना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न अगर आपके दिमाग में हैं तो चलिए उसका निराकरण आज करते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ योगाचार्य विवेक कुलकर्णी जी से। विवेक जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
नमस्ते हरिता जी और हमारे सभी दर्शकों को विवेक का नमस्कार।
विवेक जी, पहला प्रश्न ये है कि जब भी योग किया जाए तो क्या एक ही समय पर योग करना चाहिए? कितने समय तक योग करना अच्छा हो सकता है जब समय की कमी चल रही हो, बहुत सारे काम हो अपने हाथ में?
हाँ जी, तो सबसे पहले हर इंसान की शरीर शारीरिक ताकत अलग रहती है और हर आदमी आजकल जो काम कर रहा है उसके हिसाब से हमारे पास वक्त भी अलग अलग रहता है। तो योग एक ऐसी चीज है कि जो हर किसी को अपने अपने ताकत के हिसाब से और अपने अपने समय के हिसाब से करने की अनुमति देता है। तो हर कोई इसको कर सकता है और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा समय तक भी कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कब टाइम है। सुबह टाइम है तो ठीक है, दोपहर को टाइम है तो ठीक है, शाम को है, इसको कभी भी किया जा सकता है। हम लोग जब योगा के बारे में सिखाते हैं लोगों को तो हम लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि योगा करने के टाइम पे हमारा ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी जो सांस अंदर बाहर चलती रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए खाना खाने के बाद अगर आप 2 या 3 घंटे का अगर गैप रखें तो उसके बाद आप किसी भी समय पर योग कर सकते हैं।
तो योग से किस किस प्रकार का लाभ होता है? जैसे कि जनरली लोग कहते हैं कि फिजिकल और मेंटल दोनों कंडीशंस में योग का अभ्यास किया जाए तो स्वास्थ्य को फायदा होता है, लाभ होता है। तो अगर शारीरिक व्याधियों की बात करूं तो कौन कौन सी शारीरिक व्याधियां हैं जिसका उपचार इससे हो सकता है या फिर उस तकलीफों में राहत मिल सकती है?
हाँ जी, वैसे अगर आप अगर योग की डेफिनेशन देखें तो योग जो शुरू हुआ था और ये जो तरीका है वो मन को शांत करने का तरीका है। और जब मन शांत रहता है तो उससे मन से जुड़ी हुई सभी व्याधियां और शरीर से जुड़ी हुई भी काफी सारी व्याधियां उससे आपको फर्क मिलता है या उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। तो उसके अलावा शरीर में काफी सारी ताकत आती है और ऊर्जा भी आती है। तो अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में काफी सारी बीमारियां हैं जो आम आदमी को एवरीडे लाइफ में हमें दिखाई देती है और जिसके ऊपर हर कोई मेडिकेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर देखा जाए तो अस्थमा या हे फीवर या माइग्रेन, ये बहुत बहुत आम दिखाई हुई चीज जो ऑस्ट्रेलिया में हमें छोटे से छोटे बच्चों से लेके बड़े से बड़े लोगों तक दिखाई देती है। अगर हम लोग अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है इसको अगर रेगुलरली मॉर्निंग या इवनिंग 5 से 7 मिनट भी कर ले तो इससे आपको अस्थमा, हे फीवर और माइग्रेन के ऊपर काफी सारी राहत मिलेगी। इसके अलावा हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम जो फोर्सफुल बेलो ब्रीदिंग जो करते हैं उससे भी अस्थमा और हे फीवर आपका कम हो सकता है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया में आप देखें तो अर्थराइटिस का भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो सूर्य नमस्कार का जो 12 आसनों का सीक्वेंस है जिसको अगर हम लोग शांति से, आराम से और बराबर सांस का संतुलन करते हुए अगर करें तो उससे आपको अर्थराइटिस की आपकी काफी सारी बीमारियां और काफी सारी जॉइंट्स प्रॉब्लम कम हो सकते हैं। जैसे अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम लोग वॉरियर पोज या ट्रायंगुलर पोज करके जो है अपना वो से करने से आपका उसके ऊपर पूरा नियंत्रण आ सकता है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन रहती है, लोग खाना खाते टाइम तो कुछ सोचते नहीं लेकिन खाने के बाद लोगों को पता लगता है कि ये बीमारी वो बीमारी। तो उसके लिए शिशु आसन या कपालभाति प्राणायाम ये दोनों बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर काम करते हैं और इससे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कम हो सकती है या बिल्कुल चली भी जा सकती है। माइग्रेन का भी आप हमेशा सुनते रहते हो, उसके लिए शीर्षासन या सर्वांगासन भी कहा है कि जो अगर करने से आपको माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर मोटापा है, खास करके अगर किसी से बात करें तो ज्यादातर मोटापा अपने शरीर में पेट के और कमर के ऊपर जो फैट है उसी के लेके सब लोग परेशान रहते हैं और उसी से रिलेटेड काफी सारी बीमारियां भी रहती है। पश्चिम उत्तासनासन जिसका मतलब हम लोग खड़े रह के नीचे झुकना और बैठ के अपने सिर को नी को लगाना, ये दोनों जो चीजें हैं जो सिंपल दिखती है, लेकिन इसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका वो मोटापा जो है, जो कमर के बाजू बाजू में है, वो पूरा आपका कम हो सकता है धीरे धीरे, और वो इस तरह से कम हो जाता है कि उसका वो वापस आने का चांस नहीं रहता। क्योंकि ये तो खासियत है जिम जाना, स्विमिंग करना या योग में, क्योंकि योग जो आपकी बीमारी निकालता है अपने शरीर से या मन से, वो इस तरह से निकालता है कि वो वापिस आने नहीं देता उसको।
जी बिल्कुल, तो ये तो बात की हमने जो शारीरिक परेशानियां हैं उसके बारे में, मेंटल जो इश्यूज हैं, जो मानसिक परेशानियां हैं, उसमें योग कैसे मदद कर सकता है?
हाँ जी, अभी शारीरिक चीजों के लिए जो हमने आसनास बताया है, वो तो आसनास शरीर के ऊपर काम करते हैं, और उसी आसनास से हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, लंग पावर भी बढ़ जाती है। योग सिर्फ आसना तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप पतंजलि योग सूत्र में देखोगे तो उसके जो 8 अंग है, उसमें सबसे एक अंग तो आसना है, दूसरा अंग प्राणायाम, जो अपना ब्रीदिंग के ऊपर पूरा काम करता है। अलग अलग तरह के प्राणायाम, जैसे कपालभाति हो गया, भ्रमरी हो गया, अनुलोम विलोम जो मैंने आपको अभी बताया वो हो गया। ये जो प्राणायाम हम लोग योग में जो सिखाते हैं, उससे आपका हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और एनी अदर डिसीज, डिप्रेशन दैट यू आर गोइंग थ्रू, वो सब बीमारियां आपकी कम हो जाती है, या कुछ कुछ समय के बाद तो पूरी निकल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी होनी चाहिए फिर आप योग शुरू कर सकते। इसका फायदा ये है कि आप योग शुरू करो, उसके बाद आपको ये कभी बीमारी होगी भी नहीं। ये फायदा है योग का कि आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए योग करने के लिए, बट योग करने के बाद आप हर बीमारी से शारीरिक और मानसिक अपने आप को दूर रख सकते हैं।
विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे श्रोताओं को योग के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए।